आसक्ति से हानि, ज्ञान मार्ग में चले दृष्टा या साक्षी बनकर के कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर रहे, भक्ति मार्ग में चले तो जो कुछ काम किया जा रहा है वो भगवान करवा रहे हैं। अपने आप को कठपुतली की तरह माने, कर्म फल भी भगवान पर छोड़ दे, वैसे ये सूक्ष्म अभिमान भले ही हो कि मैं भगवान का हूं, परंतु ये शुद्ध अभिमान है। संतों ने तो इस अभिमान को पकड़ा है, अस अभिमान जाय जनि भोरे, भोलेपन में भी ये अभिमान छूटना नहीं चाहिए कि मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी है। ये जो आजकल लोग कर्मों में लगे हैं, ये कर्मों में आसक्ति ये विष के समान है। फल की इच्छा है, ये दांत है। कर्मों में आसक्ति विष के समान है और फल की जो इच्छा है वो दांत है। सांप के विष के दांत निकाल दो, फिर उस सांप को चाहे गले में डालो, कोई हानि नहीं है। ऐसे ही ये अहंकार सांप है और फल की इच्छा है ये दांत है और कर्मों में आसक्ति ये जहर है। तो आसक्ति पूर्वक जो हम फल की इच्छा से काम करते हैं तब हमारे जहर चढ़ता है। मैं भगवान के लिए कर्म करता हूं, इसमें अभिमान तो है। निस्वार्थ भाव से कर्तव्य समझकर भगवान के लिए कर्म करता हूं, ऐसी बात आने पर अभिमान की मात्रा बहुत कम है। ये शुद्ध अभिमान है। ये शुद्ध अभिमान है। कर्मयोग में कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्याग सात्विको मत है। अर्थात केवल मुझे कर्म करना है, शास्त्रविद कर्तव्य कर्म करना है, इस भाव से कर्म करता है, आसक्ति और फल का त्याग करता है, तो वो सात्विक कर्म है, सात्विक त्याग है। कर्म करना कर्तव्य है, शास्त्र की मर्यादा है, भगवान के वचन है, इसलिए करते हैं। शास्त्र की आज्ञा है कि कर्तव्य समझ करके फलाशक्ति का त्याग करके कर्म करो। यहां सात्विक अहंकार है पर दोष नहीं है, क्योंकि फल की इच्छा का त्याग है। हम लोग क्या करते हैं, कल्याण के मार्ग में चलते हैं तो कर्म ही छोड़ देते हैं। कर्म को छोड़ने में वो लाभ नहीं है, क्योंकि कर्म तो शास्त्र की आज्ञा का स्वरूप है। मनमाना तो कर्म है नहीं, कर्म करें कर्तव्य बुद्धि से करें, भगवान की प्रसन्नता की भावना से करे। त्याग करना है तो उसमें से आसक्ति का और फल का त्याग करो। भक्ति मार्गी वाला, भक्ति मार्गी भगवान के निमित्त से निष्काम भाव से कर्म करता है, उसको दोष थोड़ा ही लगता है। गीता ने अर्जुन को कर्म में ही तो लगाया है। अर्जुन तो कर्म करना ही नहीं चाहता था, परंतु भगवान ने कहा कि इस प्रकार से यदि तुम युद्ध छोड़ करके जाओगे तो इससे कल्याण थोड़ा ही होगा। न तो युद्ध करने से कल्याण है, न युद्ध को छोड़ने से कल्याण है, बल्कि आसक्ति का त्याग करने में कल्याण है, फल की इच्छा का त्याग करने में कल्याण है। कितनी उत्तम बात है। भगवान के अर्पण कर देने में दो भेद है, शुद्ध से ही भगवान के और शुरू से ही भगवान के अर्पण और कर्म करने के बाद अर्पण, ये दो प्रकार के भगवान के अर्पण हैं। शुरू में अर्पण हो जाए तो बड़ी अच्छी है, भगवान आप ही का काम कर रहा हूं, और करने के बाद ये आपके लिए काम कर दिया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। इदम इंद्राय न मम, इदम अग्नये न मम। भगवद अर्थ कर्म तो शुरू से ही होता है, समर्पण बीच में हो जाता है और अंत में भी हो सकता है। अतएव अपने आप को और क्रिया को शुरू से ही भगवान के अर्पण कर दे। अपने में जो शक्ति है उस शक्ति भर चेष्टा करे तो परमात्मा की प्राप्ति में कोई विलंब नहीं है। किंतु हम अपनी शक्ति को बचा करके प्रयत्न करते हैं। अभी कोई राज हमारे पर जुर्माना लगा दे तो उस जुर्माना के माफी के लिए हम कितना जोर से प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में कोई रोग लग जाए तो उसके निवारण के लिए कितनी दौड़ धूप करते हैं। ऐसे और कोई भय का अवसर आ जाए तो हम कितना रात दिन प्रयत्न करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति में तो उससे ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए, पर परमात्मा की प्राप्ति में तो हमने आलस्य कर रखा है। सत्संग सुनते हैं परंतु लगन से नहीं सुनते हैं। कोई कहता है कि हम तो बहुत ज्यादा परमात्मा की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो भी ऐसा कहते ही है। कहने वाले के हर बात का तो क्या जवाब हो, पर कसौटी पर देखना चाहिए कि हम कितना करते हैं। कर्मयोग तो भूमि है, पहले तो लोग गड्ढे में ही पड़े हैं, गड्ढे से तो बाहर निकले फिर भूमि पर आए। जी गड्ढा क्या है? ये काम क्रोध और लोभ ये नरक के दरवाजे बताए, ये गड्ढा है, खूब गहरा गड्ढा। क्रोध उतना बलवान नहीं जितना काम और लोभ बलवान है। मैं तो काम और लोभ को ज्यादा बलवान समझता हूं, चित्त में खटकने वाली बात है। क्रोध तो थोड़ी सी बात समझ में आती अपने आप जहर की तरह उतर जाता है। रुपया न्याय युक्त मिले तो भी उसका अंदर से त्याग करो, अन्याय से तो उसको स्वीकार करो ही मत, ये अन्याय से जो आपके पास रुपया आएगा वो आपका सर्वनाश करेगा, क्योंकि लोभ वृत्ति से अभी आपको ये रुपया सुख देने वाला दिखता है, पर इससे महान दुख पाना पड़ेगा। लोभ से भी ज्यादा काम का प्राबल्य है। स्त्री को चाहिए किसी पुरुष का और पुरुष को चाहिए किसी स्त्री का स्पर्श करना खतरे को बुलाना है। अच्छे पुरुष के लिए महान खतरे की बात है। देखो ये जो इस प्रकार से स्पर्श करने की बात है, ये हमने इसलिए कही है कि शूली होती है वो चाहे अपनी हो चाहे पराई हो, आंतड़ी निकाल देगी। इसी प्रकार से यह शूली के समान घातक है। अपने लड़के का लाड प्यार करो, पर लाड प्यार केवल बच्चे की खुशी तक करो, बच्चों को भी हृदय से लगाओ, मस्तक सूंघो, ये बात शास्त्र में आती है। हर एक भाई को ये ख्याल करना चाहिए कि जवान लड़के लड़कियों का संसर्ग बहुत खराब है, नरक में जाने का सीधा रास्ता है, कहीं अटकने का काम ही नहीं है। मेरे ऊपर कृपा करने के लिए या मुझे निंदा से बचाने के लिए ये यदि आदत छोड़ दो, मेरी निंदा कैसे होगी कि तुम जयदयाल जी की सत्संग सुनते हो और तुम्हारे में इतना भी सुधार नहीं आया, ऐसा कोई कहेगा तो मेरी तो निंदा हुई। आपका बड़ा उपकार होगा और अपने सत्संग के अंदर चार चांद लग जाएंगे। निष्काम भाव बड़े ऊंचे दर्जे की चीज है। खूब तात्विक बात कह रहा हूं, कभी कभी कहने में संकोच भी होता है। अब मैं क्या कहूं, कभी कभी मेरे में भी दोष आते हैं। मनुष्य अपना रुपया लगाकर मान बढ़ाई करे तो वो व्यवहार से सुकृति हुआ, लोगों के बीच में बहुत बड़ा दानी हो गया, लेकिन तुम रुपया लगाओ और मेरी मान बढ़ाई होती हो तो मैं इसका विरोध करता हूं। क्योंकि मान बढ़ाई बहुत ही ज्यादा अंदर छिपी हुई बीमारी है, अंदर छिपी हुई बीमारी। आप लोग मेरे शरीर विषय काम करते हैं, जो काम रुपयों से हो सकता है तुमसे मुफ्त करा लिया, यह एक तरह से प्रत्यक्ष में निष्काम भाव की कमी तो हुई। ऐसे लोग पद पद पर स्वार्थ ही स्वार्थ में चलते रहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं तुम्हारी घड़ी में क्या बज रहा है, काम देने वाला मिल जाए तो काम लेने में कमी नहीं रखता। मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपकी घड़ी में क्या बजा, ये मैंने आपको काम में लिया ना, सावधान रहना चाहिए। दूसरे आदमी तो क्रिया ही देखते हैं, भीतर का भाव थोड़े ही समझते हैं। भीतर का भाव तो केवल भगवान ही समझते हैं। यदि मेरा ये भाव हो कि मैं तुम्हारे हित के लिए तुमसे काम लेता हूं, तुम्हारे सत्संग के लिए तुमसे घड़ी का टाइम पूछता हूं, यह तो एक मेरे लिए भी अहंकार की बात हुई। बहुत सावधान रहो, इससे स्वार्थ वृत्ति पैदा होती है। दिखने में तो कुछ भी नहीं, घड़ी का समय ही तो पूछा है, हमने आपसे समय पूछ लिया, पर इससे क्या है? ये तो स्वार्थ बुद्धि है, ऐसी तो स्वार्थ बुद्धि बढ़ती है। ये हमारे व्यवहार की कमी है, व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। स्वार्थ त्याग पूर्वक बाहर भीतर की एक सी क्रिया होनी चाहिए। किसी भी काम में किंचन मात्र भी किसी से मदद लेना, ये स्वार्थ की सिद्धि है। जो साधु संन्यासी हो गए, उनको अन्न वस्त्र के सिवा और कोई आवश्यकता रखनी नहीं चाहिए। और यदि उनके मन में कोई आवश्यकता है तो वह साधु संन्यासी किस बात का? सारी आवश्यकताओं को मिटाकर सब प्राणियों की सहायता करे, अभयदान दे साधु। जिस आश्रम में रहे उसको लजावे नहीं। अभयदान करना माने किंचित मात्र भी किसी प्रकार से तकलीफ नहीं देना। जानबूझकर भी न दे और सावधानी रखे कि कष्ट न हो जाए। अहिंसा धर्म का पालन करना, किसी भी प्रकार के लोगों के वचनों से उद्विग्न न हो, इस प्रकार का भाव हृदय में रखकर मनुष्य को संन्यास लेना चाहिए। अपने मन को पूछते रहना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए। क्या कुछ नहीं चाहिए, बस ठीक है। परंतु हम तो और भी आगे की बात कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए ये पूछना भी कलंक है। शास्त्रों में तो आता है कि अपने को पूछो कि क्या चाहिए, कि कुछ नहीं चाहिए, पर क्यों पूछे ये भी कलंक है। हम गृहस्थ हैं, साधु ब्राह्मण वानप्रस्थ किसी के भी याचना करने पर नहीं देना, ये गृहस्थाश्रम में पतन है। कोई भी याचक हमसे असंतुष्ट होकर जाए, वो हमारा पुण्य लेकर जाता है, अपने पाप यहां छोड़ जाता है। ऐसी बातें देखें तो हमारे गृहस्थियों में कितनी कमी है। शेर जी किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबके लिए यथार्थ बात। याचकों को भोजन करा करके भोजन करना चाहिए। घर में माताओं बहनों का आदर क्यों होता है? सबको भोजन कराने के बाद मां भोजन करती है, इसलिए मां का सबसे बड़ा आदर है। सब भूत प्राणियों को भोजन देकर, पितरों को जल, देवताओं को आहुति देकर फिर भोजन करें। अपने कार्यों में त्रुटियां देखता रहे, अपने भावों में, अपनी क्रियाओं में अपनी गलती देखता रहे, इससे गलतियां निकलती हैं। यदि अपनी गलतियां हम नहीं देखेंगे तो वो गलतियां हमारे साथ रह जाएंगी। दूसरा कोई आदमी हमारी गलती को संकोच के कारण से बताएगा नहीं, और यदि कोई कृपा करके बता दे तो हमारी कितनी बड़ी भारी गलती है कि हम सफाई देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि नहीं साहब ये ऐसा है ही नहीं। यदि आप अपनी गलती की सफाइयां देते रहोगे तो जो त्रुटि बताने वाला होता है उसको दुख होता है। और बिना पूछे यदि किसी ने बता दिया तो हमको भी दुख होता है। फिर वो आदमी भय कायदा रखकर हमें हमारी गलती नहीं कहेगा, इससे हमारी उन्नति हो नहीं होगी। अपने दोषों को सुनकर प्रसन्न हो जाना चाहिए, आहा बड़ा उपकार किया आपने, हमारी कमी बताई। तो ऐसा समझना चाहिए कि वो दोष हमारे अंदर से निकल गए, कितनी बढ़िया बात है। कोई अपनी गलती बतावे तो राजी होनो। घर में सासू जी यदि कोई बात कह देवे कि थारे में आगे बस नियाल हो गया, मैं माँ ने गलती बता दी, तो मैं दोष निकल जावे आप ही। और यदि सफाई दे दी कि नहीं हमारे में तो ये दोष नहीं है, तो समझो कि वो मकान की रजिस्ट्री करा दी। जैसे मैंने आपको मकान की रजिस्ट्री करा दी, वो मकान पक्का हो गया, ऐसे आपको तो पक्का हो गया। कोई सफाई दे तो समझना चाहिए सदा के लिए रजिस्ट्री करा दी, दोष नहीं निकलेंगे। जैसे कोई नासूर हो गया और उसमें मवाद निकलता ही नहीं है, वो खतरनाक है। सामान्य फोड़ा फुंसी हो, उसको चीरा फाड़ी करके उसमें मवाद निकाल लेते हैं तो जल्दी ठीक हो जाता है। नासूर ठीक नहीं होता और मवाद निकलता नहीं। हर एक भाई बहन को अपने दोष हंस हंस करके निकालना चाहिए। आजकल के लड़के माता पिता के प्रतिकूल चलते हैं, इसमें कुछ तो माता पिता का भी दोष है, क्योंकि शुरू से उसको ज्यादा मोह में नहीं पालते तो यह दशा नहीं होती। हम छोटी अवस्था में जब बालकों से लड़ते, छोटे बच्चे थे, लड़ लेते आपस में, तो मन में यह डर रहता कि हमारे पिताजी से नहीं कह दे। ऐसा न करने के लिए हम अपने उस लड़के की खुशामद करते कि जो कुछ कहना है मुझे ही कह दो, मेरे पिताजी को मत कहना। और हम देखते हैं कि वो हमारे घर में घुस गया है और पिताजी के पास शिकायत करता है, तो हम पिताजी घर में रहते तब तक घर में घुसते नहीं थे, देखते कि अरे अब पिताजी बाजार गए तब हम घर में आते। मां बोलती कि बेटा जैदा, आज तेरे पिताजी ने रोटी देने के लिए मना कर दिया। 10 मिनट बाद फिर पिताजी आते और पूछते, मेरी मां को पूछते कि इसको रोटी तो नहीं दी ना? मां कहती नहीं दी। तो मेरे आंखों में आंसू आते। फिर पिताजी पूछते, क्यों आगे तो ऐसा नहीं करोगे ना? तो मैं कह देता सिर हिला करके, नहीं नहीं करेंगे। तो फिर अच्छा अब रोटी जी मिली। ये मेरे साथ बीती हुई बात है, सेठ जी के मेरे साथ बीती हुई बात है। जिस लड़के को माता पिता छोटी अवस्था में शिक्षा देते हैं, वह लड़का खराब रास्ते पर कैसे जाएगा? वे माता पिता शत्रु हैं जो लड़के का आवश्यकता से अधिक लाड प्यार करते हैं और उसकी गलती में भी उसका पक्ष लेते हैं, वे उसके गले पर छुरी चलाते हैं। लड़के की शिकायत कहकर कुछ नहीं बोलते, वह लड़का तो सड़ेगा। सेठ जी की शब्दावली, लड़के की शिकायत सुनकर कुछ नहीं कहते, वो लड़का तो सड़ेगा। उसी प्रकार हमारी बुरी आदत, झूठ कपट चोरी की आदत, हमारे दुर्गुण आचरण आदि बाहर में प्रकाशित नहीं होंगे तो ये तो नरक में जाएंगे। यदि आपको कल्याण के मार्ग पर चलना है तो हृदय से अपने दोषों को शत्रु समझ करके जड़ से निकाल कर फेंक दो। आप ये मानो कि जब तक ये शत्रु आपके अंदर विराजमान है तब तक आपको नरकों से कोई बचा नहीं सकता। इन शत्रुओं पर दया मत करो, ये दया के योग्य नहीं है। दुर्गुण दुराचार दया के पात्र नहीं है। काम क्रोध और लोभ ये आपके लिए बहुत ही खराब चीज है। ये जड़ पदार्थ हैं, ये निर्जीव पदार्थ हैं, सजीव पदार्थ नहीं है। इसलिए इनको उखाड़ करके फेंकने में कोई दोष थोड़े ही, बल्कि बड़ा आराम है। इनका इनको आदर देना, अपना आलस्य कमजोरी तथा त्रुटि है, इसको निकाल देना चाहिए। निष्काम भाव भी हो और निष्काम क्रिया भी हो। ममता अभिमान का त्याग और फलाशक्ति का त्याग, इसमें सावधान रहो। स्वार्थ का भाव क्रिया में भी नहीं आना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवे तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है वैसे ही दूसरों पर उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसका आचरण प्रमाण है। श्रेष्ठ पुरुष को ही आदर्श बनाना चाहिए। त्रेता युग में भगवान राम आदर्श थे। राजा जनक, अश्वपति, मानधाता ये आदर्श थे। युधिष्ठिर महाराज आदर्श थे। विदुर जी दासी पुत्र होकर भी आदर्श थे। राजाओं में महाराज युधिष्ठिर और नीची श्रेणियों में धर्म व्याध ये आदर्श थे। वैश्यों में समाधि वैश्य, तुलाधार वैश्य ये आदर्श थे। श्रवण कुमार आदर्श थे। उनकी माता पिता की भक्ति तथा राजा दशरथ के साथ का बर्ताव कितना उत्तम था। त्रेता युग में मूक चांडाल आदर्श था। ब्राह्मणों में और ऋषियों में तो असंख्य आदर्श पुरुष थे, जिनकी संख्या ही नहीं है। उद्दालक, धौम्य मुनि, आरुणि, याज्ञवल्क्य, जबाला का पुत्र सत्यकाम, वेदव्यास, वशिष्ठ, वामदेव आदर्श पुरुष, जड़ भरत आदि आदर्श पुरुष थे, उच्च कोटि के पुरुष थे। सभी जातियों में आदर्श पुरुष हुए हैं। उनके अनुसार हमको आदर्श रखकर आचरण करना चाहिए। प्रत्येक युग और कल्प में हजारों महापुरुष हुए और आगे भी होते रहेंगे, जिनका जन्म अपने कल्याण के लिए तथा संसार के हित के लिए है, उनका ही जन्म सफल है। जो दूसरों का कल्याण करता है उसका कल्याण तो हो ही जाता है। जब तक काम क्रोध लोभ ये दोष है तब तक मनुष्य भूमि पर नहीं गड्ढे में है, ये प्रसंग चल रहा था। बड़े बड़े दोषों का वैराग्य रूपी अस्त्र से छेदन करना चाहिए। अपने पास जो चीज है उसकी वृद्धि की इच्छा नहीं करने से लोभ की इच्छा खत्म होती है। जो है उसमें संतुष्ट रहो, और बढ़े यह इच्छा न करने से लोभ खत्म होता है। जैसे दो पुत्र हैं तो यह इच्छा नहीं करें कि और हो, रुपए हो तो और रुपया हो, ऐसी तृष्णा मत बढ़ाओ। जो कुछ हमारे पास है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इच्छा रहे तो कल्याण करने वाली है। जितनी भोग सामग्री को आप बढ़ाओगे उतना ही आपका पतन होता चला जाएगा। यह इच्छा मौत के समान है। और रुपया मिले, और भोग सामग्री मिले, और हमको मिले, यह इच्छा मौत के समान है। यह इच्छा महान रोग है और ये विष के समान मानी गई है। मान बढ़ाई से सावधान रहो। मान बढ़ाई धन और संतान इनकी इच्छा बढ़ने से खतरा ही बढ़ेगा। हमारे पर भगवान की दया हुई, सेठ जी लिख रहे हैं, हमारे पर भगवान की दया हुई कि लड़का पैदा ही नहीं हुआ। मान बढ़ाई हुई नहीं तो ये भगवान की और भी विशेष दया है। सेठ जी की ज्यादा, सेठ जी के सत्संग ज्यादा लोग आते भी नहीं थे, तो ये भगवान की दया हो गई। इसलिए तृष्णा मिटानी चाहिए। ये पिशाचिनी है, डाकनी है, दूर से ही हाथ जोड़ देना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं संतुष्टो येन केनचित। चाहे आपको कैसे भी ये इच्छाएं निकालनी पड़े, साम दाम दंड भेद, किसी प्रकार से इनको निकाल दो। इसके बाद हम जो कुछ उत्तम काम यज्ञ दान या तप करते हैं उन्हें कामना लेकर करना ही नहीं चाहिए। देव कर्म, तीर्थ व्रत, धर्म आदि उत्तम कर्मों को किसी कामना के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। आरंभ करने के बाद यदि कामना पैदा हो जाए तो एकदम ही काट डालो। अब कोई पूछेगा कि जब हमारे मन में कोई कामना ही नहीं रखनी है तो फिर कर्म करें ही क्यों? तो हम कहते हैं कि कर्तव्य बुद्धि से करो। इससे भी ऊंची बात कहते हैं कि भगवान की खुशी के लिए करो, ज्ञान मार्ग के लिए, आत्म कल्याण के लिए करते हैं। लेकिन स्वार्थी व्यक्ति के मन में यह प्रश्न होता है कि जब हमारे मन में इच्छा ही नहीं होगी तो हम कर्म करें ही क्यों? इससे आप में जो दोष, अपराध, विकार, क्लेश, चिंता, भय, अशांति है ये सब मिट जाएगी। सदा के लिए परम आनंद, परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा उद्देश्य रखकर कर्म करें। ये कामना शुद्ध होते हुए भी, ये कामना होते हुए भी शुद्ध कामना है। इससे ऊपर वह है जो कर्तव्य बुद्धि से करे। इससे ऊपर वो है जो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करे। यज्ञ दान तप का फल नरक नहीं होता, पर उसकी इच्छा करोगे तो फिर आगे इस इच्छा से और नई इच्छाएं पैदा हो जाएंगी, उससे नरक मिलेगा। यज्ञ दान तप का फल तो संसार में ऐश्वर्य, मान बढ़ाई ये है, मरने के बाद स्वर्ग है, किंतु इस फल में और तिर्यक योनियों की प्राप्ति में फिर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। सोने की बेड़ी और चाहे लोहे की बेड़ी हो, वो बेड़ी तो वही है, सांकल बंधन तो दोनों में ही है। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। और दूसरी तरफ निष्काम भाव से करोगे तो शुभ अशुभ फली रेव, मोक्ष से कर्म बंधन ही। नरक में ले जाने वाली बेड़ी से ये बेड़ी श्रेष्ठ है, पर वैराग्य रूपी शास्त्र से काट लेना चाहिए। सत्संग ये शाण है, छुरे की धार का तेज करने का जो पत्थर है उसको शाण बोलते हैं। सत्संग ये शाण है, भोग रूपी फांसी को हर वक्त काटने के लिए तैयार रहो। जड़ चेतन हर एक पदार्थ में हम स्वार्थ सिद्ध करते हैं। जड़ से स्वार्थ सिद्ध किया तो हम ऋणी नहीं बनते, पर चेतन से स्वार्थ किया तो हम ऋणी बन जाते हैं। माने किसी आदमी का जो है सहायता ली तो उसका ऋणी होना पड़ेगा। तीर्थों में दूसरे के अन्न से यदि हम निर्वाह करें, आश्रय से निर्वाह करें, तो तीर्थ का फल हमारे हाथ से छीन लिया जाएगा। इसीलिए देखो अपने लोग ये रखते हैं, जब तीर्थों में जाते हैं जैसे अब चित्रकूट जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा चार्ज इसीलिए रखते हैं। सेठ जी मना करते थे कि भाई, वो कहते नहीं, तीर्थों का जो फल होता है रहने का और का, उसमें कम ले हो, ये बात है, परंतु बिल्कुल नहीं ले हो, उससे वो फल बेचारे इतनी दूर तकलीफ पाके जाते हैं, उनको फल कैसे मिलेगा। तो ऐसे तीर्थों में जाओ तो दूसरे के अन्न से निर्वाह करें तो तीर्थों का फल वो ले लेगा। अतएव स्वावलंबी बनकर निर्वाह करें, नौकर से काम लेते हैं तो बदले में उसको वेतन देना चाहिए। हां ये बात है, अपना लड़का हो, अपनी स्त्री हो, घर में काम काज करते हैं, ये कोई दोष नहीं है, परंतु स्वावलंबी एक अलग ही चीज है। अपना काम खुद करे, कर सकते हो वहां तक करना चाहिए। सीता जी और लक्ष्मण जी राम जी के साथ वन में जाने के लिए तैयार हुए, भगवान ने मना किया, अंत में आग्रह करने पर साथ में ले लिया। भगवान क्यों मना कर रहे हैं और वो क्यों जाना चाहते हैं? सीता और लक्ष्मण भगवान की सेवा के लिए जाना चाहते हैं, भगवान इसलिए मना करते हैं कि मेरा काम तो मैं स्वयं ही कर लूंगा। तो अपना काम स्वतः करने की आदत भगवान में भी थी। हां कभी कभी ऐसा भी मौका पड़ता है, दूसरे का सम्मान कर रखने के लिए, दूसरे का आदर करने के लिए कोई थोड़ी बहुत संतोष के लिए सेवा ले ली तो ले ली, उसमें कोई इतना दोष नहीं है, पर अपने अंदर वैराग्य का अस्त्र है वो तो बराबर ही रहना चाहिए। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़े छित्वा, काटने की चार रस्सी बताई, परतंत्रता की रस्सी, दूसरे से स्वार्थ सिद्ध करना, स्वर्ग में आना जाना और तृष्णा की तृष्णा, ये चार प्रकार की रस्सियां हैं, इनको काटना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा कर्मणि एव अधिकारस्ते, कर्म को करो, फल की तरफ इच्छा मत करो। देखो लोगों को पता नहीं है, कोई बगीचे में हम गए, पास में निकले कोई बगीचा देखा, बड़ा सुंदर बगीचा, सघन बगीचा, ठंडी छाया, इसमें थोड़ा सा घूम ही आए, चलते चलते कोई अच्छा फूल दिख आया, कोई फल दिख आया, चलो पत्ता ही दिख आया, तो पत्ता भी तोड़ना ये बहुत खराब बात है। हां उस बगीचे में आप गए, कहीं पानी है तो पानी से उस वृक्ष में जल दे दिया, ये तो हम कर सकते हैं, पर फल फूल नहीं तोड़ सकते, तोड़ेंगे तो चोरी कहलाएगी। महाभारत में कथा आती है, याज और उपयाज नाम के दो भाई थे, दोनों किसी यज्ञ के लिए जा रहे थे, मार्ग में एक वृक्ष का फल गिरा, तो दोनों भाई में से एक ने वो फल उठा लिया और उस फल को खा लिया। आगे जाकर वो यज्ञ में जाकर बैठे तो वहां देवता प्रकट होकर कहने लगे कि जिसने ये फल खाया था रास्ते में, उसके यज्ञ के अंदर हम नहीं आए हैं, उसके द्वारा दी हुई आहुति हमको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने पराई वस्तु का सेवन किया है। रस्ते में पड़ा हुआ एक फल था, उसको भी खाने में फल नहीं मिला, देवताओं ने मना किया कि हम नहीं लेंगे इसका, हाँ इस भाई का हम लेंगे। ऐसे ध्यान रखना चाहिए, ये अन्याय होता है। जो कुछ क्रिया कर रहे हैं सब में परमात्मा की तरफ से सहयोग मिल रहा है। फल में अधिकार है तो परमात्मा का है, तुम्हारा क्या है? फल का त्याग करने की अपेक्षा फल का न चाहना उत्तम है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है। एक वैद्य निष्काम भाव से इलाज कर रहा है, उसे पैसा देने लगे तो वैद्य ने कहा हमने तो प्रेम के नाते काम किया है। वैद्य की बात आई। एक वैद्य निष्काम भाव से इलाज कर रहा है, उसे पैसे देने लगे तो वैद्य ने कहा हमने तो प्रेम के नाते काम किया है। तो देने वाला कहता हम तो प्रेम के नाते देते हैं, और वैद्य ने स्वीकार कर लिया तो देने वाले ने अपना कर्तव्य समझा, यह उसकी साधुता है, श्रेष्ठता है, देने वाले की प्रशंसा है, लेने वाले में साधुता की कमी आई। अतएव ऐसा देने वाला मिले तो देने पर भी स्वीकार नहीं करें, ये स्वीकार करना फल स्वीकार करना है। वहां तो ये बात होनी चाहिए कि हमारा अधिकार ही नहीं तो लेवें क्या। उसी प्रकार हमको भगवान के घर से सब चीज मिल रही है, हमें लेने का अधिकार नहीं, क्योंकि भगवान का हुक्म नहीं है। भगवान तो पहले ही कह दिए कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान देवे तो भी नहीं लेना चाहिए, तुम्हें देना हो तो मालिक को देओ, तुमसे हम ले लेंगे तो हम अनधिकार चेष्टा करेंगे। यह भी गले की पांचवी फांसी है, वैराग्य का शस्त्र यहां भी लगाना चाहिए। कर्म के फल का हेतु भी नहीं बनना चाहिए, अर्थात ये काम मैंने किया, मेरे द्वारा यज्ञ दान तप हुआ, ये कर्म का फल का कारण बनना है। फिर भगवान कहते हैं माते संगोस्त्व कर्मणि। कहीं लोगों के मन में ये भावना नहीं आ जाए कि फिर हम कर्म करें क्यों, तो भगवान ने सावधान किया नहीं नहीं, अकर्म में तुम्हारी आसक्ति न हो। इस प्रकार से सूक्ष्म वासना सूक्ष्म अभिमान, इस पर ध्यान देओ। अपने जीवन में क्या होगा, मैं मरूं ही नहीं, मैं सदा सुखी रहूं, ऐसी ऐसी सूक्ष्म वासनाएं इनको निकालो। न मरने की इच्छा करो न जीने की इच्छा करो, क्योंकि आपका जन्म आपकी इच्छा से नहीं हुआ है, तो मरने में आपकी इच्छा काम नहीं आएगी कि भाई मैं नहीं, मरने की इच्छा रहेगी तो मैं मरूंगा ही नहीं, ऐसे काम तो आएगी नहीं, मरना तो पड़ेगा ही। तो जिनकी इच्छा से हम जन्मे हैं उनकी इच्छा से मर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कर्म करके ये भाव दिखलाना चाहिए, भगवान की सेवा की मन में आया कि मैंने किया तो ये कलंक है। अहंकार नहीं आए, बड़े आनंद की बात है। इस प्रकार से आसक्ति से बचना चाहिए।